नमस्कार भारत, तारीख 20 अगस्त दिन सोमवार, मैं हूँ मानसी दाश। केरल में कम हो रहा है बाढ़ का पानी, पर आगे क्या है बड़ी चुनौतियाँ?
पानी रिपीट हो रहे हैं, इसलिए तो अभी डेड बॉडीज भी उस पे आ सकती है, कोई कंटामिनेशन डिसीजेस आने की चांसेस है।
केरल के पड़ोसी राज्य कर्नाटक में भी जारी है बारिश का कहर,
कंटिन्यूसली रेनफॉल हो रहा है, उसकी वजह से सॉइल लूज हो गया है। नॉर्थ इंडिया में होता है, वहाँ पत्थरों के होते हैं पहाड़, यहाँ पर सॉइल है तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड हो गई।
साथ ही आपको सुनाएंगे पाकिस्तान से वसीतुल्लाह खान की डायरी।
पाकिस्तान भारत संबंधों को नॉर्मल सतह पे लाने में भले वाजपेयी जी के इरादे सफल ना हो पाए, मगर कोई ये नहीं कह सकता कि उन्होंने कोशिश नहीं की।
होगा साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी भी, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। भारत के मौसम विभाग के मुताबिक बाढ़ प्रभावित केरल में अगले 5 दिनों तक कम बारिश होगी, जिससे प्रभावित लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। कई इलाकों में बाढ़ का पानी उतरने लगा है। इसी बीच प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने का व्यापक अभियान जारी है। बाढ़ की वजह से लाखों लोग बेघर हो गए हैं। बाढ़ के बाद अब बीमारियों का खतरा पैदा हो गया है, जिससे निपटने की तैयारियां की जा रही हैं। जून के बाद से अब तक भारी बारिश और बाढ़ की वजह से केरल में 350 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से अधिकतर की मौत भूस्खलन की वजह से हुई है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने ईद उल अजहा के मौके पर तालिबान के साथ एकतरफा संघर्ष विराम का ऐलान किया है। इस साल ये दूसरी बार है जब अफगानिस्तान सरकार ने संघर्ष विराम की घोषणा की है। 3 महीने के लिए घोषित किया गया ये संघर्ष विराम तब तक चलेगा जब तक तालिबान इसका सम्मान करेगा। संघर्ष विराम का ऐलान करते हुए अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा, हम कल से पैगंबर मोहम्मद के जन्म दिवस तक के लिए संघर्ष विराम की घोषणा करते हैं, ताकि हमारे देश के लोग ईद उल अजहा का त्यौहार शांतिपूर्वक तरीके से मना सकें। ये संघर्ष विराम तब तक जारी रहेगा जब तक तालिबान इसका सम्मान करेगा या संघर्ष विराम की किसी काल की घोषणा करेगा। तालिबान की ओर से अभी इस प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन समूह का कहना है कि वो ईद के मौके पर बंदियों को रिहा करेगा। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इस पहल का स्वागत करते हुए तालिबान से संघर्ष विराम में शामिल होने की अपील की है। इससे पहले जून में ईद उल फित्र के मौके पर दोनों पक्षों ने 3 दिनों का संघर्ष विराम किया था। कर्ज संकट में फंसे ग्रीस की वित्तीय मदद के लिए 3 साल से चल रहा यूरोजोन राहत कार्यक्रम समाप्त हो गया है। ग्रीस में वित्तीय स्थिरता लाने के लिए शुरू किए गए कोष यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म की ओर से कहा गया है कि 8 सालों में ये पहली बार है जब ग्रीस अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। यूरोजोन के कोष के तहत ग्रीस को $70 अरब से अधिक का कर्ज दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मदद को अगर जोड़ लिया जाए तो ग्रीस को वित्तीय इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक मदद मुहैया कराई गई। कर्ज की शर्तों के तहत ग्रीस की सरकार को खर्च कटौती कार्यक्रम शुरू करने पड़े थे, जिससे लोगों में नाराजगी पैदा हो गई थी। बीबीसी के वित्तीय संवाददाता के मुताबिक ग्रीस की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, लेकिन कर्ज संकट शुरू होने के समय से अभी भी 25% कम है। खाड़ी देश कतर ने तुर्की की अर्थव्यवस्था को सहयोग देते रहने के संकेत दिए हैं। अमेरिका के साथ तनाव की वजह से तुर्की की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। तुर्की और कतर के वित्तीय अधिकारियों का कहना है कि दोनों देश द्विपक्षीय मुद्रा विनिमयन लाइन स्थापित करने पर सहमत हो गए हैं। इंडोनेशिया के लामबोक द्वीप पर भूकंप के कई झटके आए हैं। 3 झटके तो 40 मिनट के भीतर आए, जिनसे लोगों में अफरा तफरी फैल गई। भूकंप की वजह से 1 व्यक्ति की मौत हो गई है और कई इमारतें धराशायी हो गईं। कई जगह आग लगने की भी खबरें हैं। इस द्वीप पर बीते 3 सप्ताह में आए भूकंपों की वजह से 400 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। उत्तर पूर्वी नाइजीरिया में इस्लामी लड़ाकों के एक हमले में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दाश का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी bbchindi.com और मोबाइल पर सुन सकते हैं। केरल में बीते गए दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बांधों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। नदियां तो नदियां, सड़कें भी पानी से लबालब भरी हुई हैं और नावों से लोगों को बचाने के लिए राहत कार्य किया जा रहा है। पूरे देश से मदद के रूप में पीने का पानी, खाना, कपड़े और ज़रूरी दवाइयां केरल पहुँचाई जा रही हैं। बीबीसी संवाददाता सलमान रावी एर्नाकुलम से होते हुए त्रिशूर पहुंचे हैं। इस इलाके में बाढ़ की ताजा स्थिति क्या है, जानने के लिए अब से थोड़ी देर पहले मैंने उनसे बात की।
देखिए, एक तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है कि रास्तों को खोलना, क्योंकि अभी भी बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं जो बिल्कुल टूटे पड़े हैं। और हालांकि रेस्क्यू का काम, चूंकि पानी थोड़ा सा कम हुआ है जिन जगहों पर, वहाँ रेस्क्यू का काम बढ़ाया गया है, लेकिन यहाँ भी एक जगह है चेंगनूर जहाँ पे 5,000 लोग एनडीआरएफ के अनुसार वो अभी भी फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाया नहीं जा सका है या जिन तक पहुंचा नहीं जा सका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी कितने दिन हो गए, 6-7
दिन हो गए। हाँ, जी।
और 7 दिन में अगर पहुंचा नहीं जा सकता है उनकी तरफ, तो आप मतलब जो ग्रेविटी है सिचुएशन की उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि रास्ते और पालाघाट को इस इलाके से जोड़ने के लिए एक सुरंग का निर्माण किया गया था। वो सुरंग जो है मतलब उसके रास्ते से बड़े बड़े ट्रक सप्लाईज लेकर आते थे, तो वो पूरा रास्ता जो है वो टूट गया। मेन हाईवे वही है, अब चूंकि वो हाईवे ही टूट गया है, बंद हो गया है, उसकी वजह से सप्लाईज नहीं आ रही है लोगों के पास, डीजल की कमी हो गई है, पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं। जो एक आध पेट्रोल पंप में कहीं से बड़ी मुश्किल से टैंकर पहुंच भी रहा है, तो मारा मारी की नौबत हो जा रही है। ये सारी चीजें तो है, लेकिन उसके बावजूद 2 लाख से भी ज्यादा लोग जो है वो विभिन्न कैंपों में है। और मुझे लगता है कि ये इतिहास का सबसे बड़ा राहत कार्य जो है वो शायद ये होगा कि जो चलाया जा रहा है। लेकिन जो स्थिति है अलेवा में, अलपुजा में, इडुकी जो डैम है जहां से पानी खोला गया, यहां अभी भी बहुत ही ग्रिम है जो सिचुएशन है। काफी अभी भी वहां पे पानी चढ़ा हुआ है। इसमें बहुत नुकसान हुआ है जानवरों का, जो अमूमन गांव में और देहात के इलाकों में, वैसे भी घरों में लोग अपने लिए पालतू जानवर रखते थे। ये जो हुआ है कि लोगों को तो बचाया जा सका है, लेकिन एनडीआरएफ ने कुछ जानवरों को भी बचाया है। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है, जैसा पिनाराई विजयन जो चीफ मिनिस्टर हैं केरल के, उनका कहना है बचाव कार्य में सबसे ज्यादा अगर काम किया किसी ने तो केरल के जो मछुआरे हैं, उन्होंने आर्मी और नेवी का काम किया है।
ताजा जानकारी दे रहे थे बीबीसी संवाददाता सलमान रावी। केरल में बीते 2 दिनों में बारिश थोड़ी कम हुई है। पानी कम होने के साथ साथ केरल में एनडीआरएफ और अन्य सुरक्षा बलों का बचाव अभियान भी तेज हो चुका है। एनडीआरएफ की 58 टीमें बचाव कार्य में लगी हैं और 38,000 से अधिक लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। यहां राहत कार्य किस तरह हो रहा है और आने वाले दिनों में क्या कुछ मुश्किलें पेश हो सकती हैं, इस बारे में जानने के लिए अब से थोड़ी देर पहले मैंने संपर्क किया बीबीसी संवाददाता प्रवीण अनामलाई से, जो बीते सप्ताह से केरल में हैं और आज तिरुवनंतपुरम पहुंचे हैं। सुनिए उन्होंने क्या बताया।
आज का अभी ऑफिशियल डेथ टोल 357 हो गए। आज की लास्ट कैलकुलेटर में 33 लोग मर चुके हैं। फिर उसकी बात मेट डिपार्टमेंट ने बोला अभी 5 और दिन बारिश हो जाएगा, बट थोड़ी थोड़ी वहां से डिक्रीज हो जाएगी। आज रात रेड अलर्ट सब डिस्ट्रिक्ट में विदड्रॉ हो चुके हैं, मतलब नॉर्मल लाइफ थोड़ी वापस आ रहे की सिम्टम्स दिखा रहे हैं। तो आज का स्टेटस पे पूरी अभी बारिश, पूरी केरल में थोड़ा 2 दिन से थोड़ा ड्राई लग रहा है। रेस्क्यू एफर्ट्स तेजी से शुरू हो गया, अभी का सिचुएशन यही है चल रहा है।
अलग अलग जिलों में सड़क संपर्क और टेलीफोन लाइनों की अभी क्या स्थिति है, क्या अब तक टेलीफोन लाइनें जो हैं वो रिस्टोर की जा चुकी हैं?
अभी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अभी तेजी से सब जगह पे इलेक्ट्रिसिटी सब चेक करके वापस दे रहे हैं। ट्रेन सर्विसेज शुरू होने की तैयार हो रहे हैं। फिर कमर्शियल फ्लाइट कोची का नेवल बेस से शुरू होने के तैयार हो चुके हैं, फिर फ्यूल और एलपीजी वो सब चीज बात शुरू कर चुका है आज, फिर गवर्नमेंट ने फ्री वाईफाई भी दे चुके हैं, तो अभी वापस नॉर्मल लाइफ आ रहा है, तो इसलिए तो हम कॉन्फिडेंटली बोल सकती है 2-3 दिन में सब जगह पे टेलीफोन और इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाएगी।
जैसा आपने बताया पानी कम होना अब शुरू हो गया है, आपको क्या लगता है पानी कम होने की स्थिति में या पानी कम होने के बाद किस तरह की नई चुनौतियां अब सामने आ सकती हैं?
पानी अर्बन और रूरल एरिया में रिसीड हो रहे हैं, इसलिए तो कोई कोई घर और पूरे स्लरी और मड के बीच में था, वो अभी वहां से अभी डेड बॉडीज भी उस पे आ सकती है, तो बाकी अभी ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज भी पूरी जगह पे मतलब ऑलमोस्ट 8 डिस्ट्रिक्ट में वही हो रहे हैं, सो इस वजह से कोई कंटामिनेशन डिसीजेस आने की चांसेस है। अभी तक सब लोग रिलीफ कैंप में सेफ रहने के लिए कोशिश किए थे, आज और कल से उसका रिश्तेदार और फैमिली मेंबर्स को ढूंढने के शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद अभी मेंटल पैनिक एक जगह पे शुरू हो जाएगा, मतलब मैं क्या करूंगा, अभी आगे क्या करूंगा, तो अभी पूरी हॉस्पिटल्स में भी अभी फुल कैपेसिटी में चल रहा है, तो इस वजह से हम देख सकते हैं एपिडेमिक डिजीज आने के लिए चांसेस बहुत है।
प्रवीण अलामलाई बता रहे थे कि केरल में बाढ़ का पानी अब कम होना शुरू हो गया है और अब वहां बीमारियों के फैलने की आशंका जताई जा रही है। केरल में राज्य सरकार, एनडीआरएफ और गैर सरकारी संगठन राहत सामग्री प्रभावितों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन राहत सामग्री पहुंचाने में किस तरह की मुश्किलें आ रही हैं, ये जानने के लिए बीबीसी संवाददाता मोहम्मद शाहिद ने बात की गैर सरकारी संस्था गूंज के संस्थापक अंशु गुप्ता से, जो इस वक्त केरल में है और राहत कार्यों में लगे हैं।
हमने मतलब और बहुत सारे डिजास्टर्स देखे, ये देखे कि शायद ही कोई ऐसा डिजास्टर है जिसमें कई लाख लोग एक साथ ऑलमोस्ट पूरे स्टेट के लगभग हर डिस्ट्रिक्ट के कैंप्स में रह रहे हो,
तो ऐसी स्थिति में कैसे मदद पहुंच पा रही है लोगों तक?
ये आई थिंक लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये नॉर्मल बाढ़ नहीं है, आप इसे जरूर केरला बाढ़ बोल रहे हैं, बाढ़ में नॉर्मली ये होता है कि आपका एक नदी में पानी चढ़ा, बहा, नुकसान पहुंचाया और पानी धीरे धीरे शांत हो गया, ये तब तक की कंटिन्यूटी में है, जब तक एक बांध के दरवाजे बंद नहीं होंगे तब तक उसका पानी उसी फोर्स से बहता रहेगा, ये बिल्कुल अलग मामला है। इसी वजह से यहाँ के सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो लार्जली एक तरह से टापू जैसे हो गए, आपस में कनेक्टिविटी खत्म हो गई।
तो इस दौरान क्या मुश्किलें आ रही हैं, जैसे कुछ आप बताइए, आप तो पानी के अलावा भी कोई मुश्किलें हैं?
नहीं, पानी का मतलब ये है कि एक्सेस नहीं है ना, जब आप पहुंच ही नहीं पा रहे हैं बहुत सारी जगह पे, इतने सारे लोग आज भी छतों पर अटके हुए हैं, तो जब तक उनको निकाला नहीं जाएगा और निकाल के आप कितने लाख लोगों के लिए रिलीफ कैंप सडनली कैसे लगाएंगे?
लोगों तक आप कह रहे हैं कि मदद पहुंच रही है लेकिन उसमें थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन बाहर के लोग कैसे मदद कर रहे हैं?
तो अभी तो देखिए जो सबसे बड़ा चैलेंज आएगा, अभी जैसे आप कोचीन में कल हम ही लोग रात को हम सिर्फ थोड़ा सा नमक और चीनी ढूंढ रहे थे लेकिन हमें दोनों चीजें नहीं मिली, तो इवन यहाँ के जो मॉल्स हैं सब कुछ है उसमें शॉर्ट सप्लाई होती जा रही है, तो अब ये वो फेज आ रहा है जब जितने भी इस देश में देश के बाहर के लोग हैं उनको काम करना होगा। रिलीफ की सप्लाईज तो एक छोटी सी चीज है टू बी ऑनेस्ट, वो तो आप 20-50-100-200 ट्रक भेज दीजिए, इतनी बड़ी आबादी में उसका क्या पता होना है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस जगह के हजारों लाखों लोग अब अपने घर जाएंगे और घर के नाम पे कुछ है नहीं, तो आपको तो अपनी जिंदगी पूरी तरीके से रिबिल्ड ही करनी है। उस जगह शायद हम सभी लोगों का बहुत बड़ा रोल है, अब मुझे लगता है कि अब जो केरल के बाहर के लोग हैं उन्हें एक बड़ा रोल प्ले करना है और लंबे समय तक करना।
केरल को अब आगे सबसे अधिक मदद की जरूरत होगी, बता रहे थे अंशु गुप्ता। केरल से सटे कर्नाटक के कोडागु जिले में बीते एक सप्ताह से भारी बारिश हो रही है और यहां भूस्खलन के कारण कम से कम 9 लोगों की मौत हुई है। जिले के कई इलाकों में पानी भर गया है और पड़ोसी जिलों से सड़क संपर्क भी टूट गया है। दक्षिण कन्नड़ के भी कम से कम 2 तालुकों में बाढ़ की स्थिति है, और जानकारी बंगलुरु से इमरान कुरैशी की इस रिपोर्ट में।
कर्नाटका का सबसे छोटा जिला कोडगु में वही हो रहा है जो केरला में हो रहा है। भारी बारिश की वजह से भूस्खलन से बहुत सारे लोग राहत शिविरों में आश्रय ले रहे हैं। उनमें से एक हैं 27 साल की रिजवान, जो अपने 42 दिन के भांजे और 90 साल की दादी के समेत अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ हैं। उन्हें खतरनाक स्थान से दूर आने के लिए कई किलोमीटर चलना पड़ा। उनके साथ मडनाड गाँव के 40 निवासी भी मडिकरी के राहत शिविर पहुंचे हैं जो 10 किलोमीटर दूर है। रिजवान ने बीबीसी को बताया,
घर में हम हमारा अराइवल के नहीं, टोटल एक 150-200 घर के नजदीक फुल गया है सर, कुछ भी नहीं है सब, कुछ जमीन को जब के गए, वो भी घर हमको बोला था किधर है, उधर गिरता नहीं है घर, हमारा घर एक प्लेस में रहेगा तो वो लेके जाने का स्पीड में सर हमको घर एक 100 मीटर का दूर में ही गिरता है घर, उतना उसका नजदीक ही नहीं गिरता है, लेके जाता है सच पे ही लेके जाता है नीचे से फाउंडेशन के साथ में, लेके जाते वक्त घर सीधा सारा दिखता रहता है जाता रहता है वैसा।
कोडगु समाज पश्चिमी घाट के पूर्व ढलानों पर है और इसकी एक सीमा केरला राज्य से है, तो जाहिर है कि जो केरला में होता है वो कोडगु में भी होगा। कर्नाटका के आपदा प्रबंधन के प्रमुख सचिव गंगाराम बडेरिया ने कहा,
लैंडस्लाइड क्या है कि एक तो काफी पेड़ है ऊपर, आपका हिली टेरेन है और लूज सॉइल है ऊपर, और नीचे क्या इनका वर्टिकल कट कर दिया है जो डेवलपमेंट वर्क की वजह से, तो सपोर्ट न होने से काफी, और ये क्या है काफी दिनों से हो रहा है, 19 जून को हम गए थे उस समय से बारिश चल रही है, लगातार कंटिन्यूसली रेनफॉल हो रहा है, उसकी वजह से सॉइल लूज हो गया है। हमारे जो नॉर्थ इंडिया में होता है वहाँ पत्थरों के होते हैं पहाड़, यहाँ पर सॉइल है तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड हो रही है।
भूस्खलन के लिए कृषि भूमि पर किए गए निर्माण कार्यों को दोषी ठहराया जा रहा है। इसी को देखते हुए कर्नाटका के मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने कृषि भूमि पर निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुमारस्वामी से फोन पर बात की और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार राज्य की मदद करेगी। प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी कुमारस्वामी से फोन पर संपर्क किया। कल बारिश कम होने से उम्मीद है कि पानी का स्तर थोड़ा कम होगा। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि आज अखबारों में क्या सुर्खियां हैं। दिलनवाज पाशा अखबारों पर नजर दौड़ा चुके हैं। दिलनवाज, बाढ़ की तस्वीरों के अलावा आज क्या कुछ अहम है अखबारों में?
जी मानसी, अधिकतर अखबारों ने पहले पन्ने पर बाढ़ की ही तस्वीर प्रकाशित की, और एक तस्वीर का मैं जिक्र करना चाहूंगा जो कल, जिसका वीडियो हमने भी लगाया है। एक आदमी पानी में झुका हुआ और उसके कमर पर पैर रखकर एक महिला नाव में सवार हो रही है। कल ये तस्वीर काफ़ी चर्चा का विषय रही सोशल मीडिया पर, और ऐसा ही एक शीर्षक लगाया है जनसत्ता ने, लिखा है, लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रहे हैं गुमनाम नायक। जैसा हमने बताया, बाढ़ के बाद अब जो है बीमारियों की चुनौतियां हैं, उससे जुड़ी खबरें अलग अलग अखबारों के पहले पन्ने पर हैं। और अब जिक्र इसके अलावा अन्य खबरों का। भारत के एथलीट बजरंग ने द गोल्डन पटकनी एशियाड में पहला गोल्ड भारत के नाम किया है, ये खबर लगभग सभी अखबारों के
पहले पन्ने। ये गोल्ड उन्होंने जो है अटल बिहारी वाजपेयी को भी समर्पित किया है।
जी मानसी, इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर का जिक्र, जिसके मुताबिक महाराष्ट्र में शिवसेना के एक पूर्व नेता को हमला करने की साजिश रचने के जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले महाराष्ट्र की जो आतंकवाद निरोधक इकाई है वो 3 और लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अभी तक 22 बम और 21 देसी हथियार बरामद किए जा चुके हैं। तो एक 5 शहरों में हमला करने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने का दावा महाराष्ट्र पुलिस की ATS इकाई ने किया है। इसके अलावा जो चीन की बहुत बड़ी कंपनी है अलीबाबा, वो भारत में रिलायंस के साथ मिलकर $5 अरब का निवेश कर सकती है, ये बता रहा है आज का अखबार हिंदुस्तान टाइम्स। इसके मुताबिक जो भारत का रिटेल बाज़ार है उसमें साझेदारी करके ये दोनों बड़ी कंपनियां आगे बढ़ सकती हैं। और लंदन में दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ बताए जाने वाले जबीर नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है,
उसकी तस्वीर भी जारी की गई
जी
है।
जी बिल्कुल, ये खबर आज अलग अलग अखबारों के पहले पन्ने पर है। जी मानसी
जी, और अब हम कार्यक्रम में लेते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय खबर इंडोनेशिया के लोम्बोक द्वीप से। आपको याद होगा कि इस द्वीप में पहले भी एक भयंकर और विनाशकारी भूकंप आया था। बीती रात भूकंप के यहाँ कई झटके महसूस किए गए, यहाँ 40 मिनट में 3 बड़े झटके महसूस किए गए हैं। यहाँ जब पहले विनाशकारी भूकंप आया था तो उसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। BBC संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए दिलनवाज पाशा से।
इंडोनेशिया का लोम्बोक द्वीप रविवार को भूकंप के कई झटकों से एक बार फिर दहल गया। यहाँ 40 मिनटों में 3 बड़े झटके महसूस किए गए हैं। रविवार को आए भूकंप के कारण यहाँ एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि कई जगहों में आग लगने की भी खबरें हैं। पहला भूकंप 6.3 तीव्रता का था, जिसकी वजह से बेलांटिंग कस्बे में कई घर धराशायी हो गए। भूकंप के बाद डरे हुए लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। जिस वक्त भूकंप आया, ये व्यक्ति राजधानी माताराम के एक होटल में था। सभी लोग होटल से बाहर भागे, लेकिन किसी ने अफरा तफरी नहीं की। सभी को बहुत ही सही तरीके से होटल के बाहर निकाला गया। वहीं पड़ोस के बाली द्वीप पर रहने वाले जूली सफरुद्दीन भूकंप के झटके की वजह से दहशत में हैं। मैं अभी भी बहुत डरा हुआ हूँ। सोते वक्त भी मुझे सजग रहना पड़ रहा है क्योंकि खतरा बरकरार है। इसी इलाके में 5 अगस्त को आए 6.9 तीव्रता के भूकंप में करीब 460 लोग मारे गए थे और हजारों घायल हुए थे। इंडोनेशिया में आमतौर पर भूकंप आते रहते हैं क्योंकि वो रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। ये वो इलाका है जहां भूकंपों का आना और ज्वालामुखी का फटना आम बात है।
रिपोर्ट सुना रहे थे दिलनवाज पाशा। और अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है पाकिस्तान से वसीतुल्लाह खान की डायरी का, जिसका हमारे श्रोताओं को इंतजार रहता है।
मुझे नहीं मालूम कि अटल बिहारी वाजपेयी के देहांत की खबर को पाकिस्तान में जिस तरह की दुखद से सुना गया उस पर भारतीय मीडिया ने कितना ध्यान दिया, मगर इमरान खान, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने जज्बात जैसे जाहिर किए, उनका खुलासा ये है कि उप महाद्वीप का एक बड़ा आदमी इस दुनिया से चला गया। पाकिस्तान भारत संबंधों को नॉर्मल सतह पे लाने में भले वाजपेयी जी के इरादे सफल ना हो पाए, मगर दोनों देशों में कोई ये नहीं कह सकता कि उन्होंने कोशिश नहीं की या जो कोशिश की वो मन से नहीं की। कम से कम वाजपेयी जी को ये क्रेडिट ज़रूर जाता है कि पहले नवाज शरीफ और फिर परवेज़ मुशर्रफ के साथ बैठ के आपसी झगड़ों को तय करने के लिए एक ऐसा दायरा ज़रूर खींच दिया जो इस्लामाबाद या दिल्ली की हर उस सरकार के काम आएगा जो वाकई इस इलाके में अमन के कार्य को आगे बढ़ाना चाहे। यह सच है कि कभी कभी एक आदमी भी इतिहास की धारा मोड़ सकता है, मगर जब पाकिस्तान और भारत जैसे देशों के संबंधों का मामला हो तो उनमें बिगाड़ तो कोई एक बोना भी पैदा कर सकता है। पर अच्छा सोचने और करने के लिए दोनों तरफ बराबर के कद की शख्सियात होना ज़रूरी हैं। 1972 और 73 वो दो वर्ष थे जिनमें भुट्टो और इंदिरा गांधी अपनी अपनी जनता में इतने पॉपुलर थे कि वो जो भी बड़ा फैसला करते उस फैसले को दोनों मुल्कों के अवाम हजम कर सकते थे। वही शिमला समझौता जो जंगी कैदियों की रिहाई और कश्मीर की सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम देने तक महदूद रहा, उसी शिमला माहदे को आने वाली नस्लों का भविष्य महफूज करने के लिए लार्जर देन लाइफ फ्रेम में भी बदला जा सकता था। दूसरा मौका आगरा में आया जब राष्ट्रपति और सेनापति मुशर्रफ ने आदरणीय वाजपेयी जी के साथ मिलके लाहौर डिक्लेरेशन का दायरा बढ़ाने की कोशिश की, मगर दोनों नेताओं को दोनों तरफ के अफलातूनों ने कौमे फुल स्टॉप की जंजीर से आखिरी लम्हों में ऐसा बांध दिया कि दोनों शायद अपने अपने साये से भी डर गए। अब जाने कौन सा पाकिस्तानी सेनापति इतना बड़ा कदम ले और जाने भारत में कब कोई वाजपेयी आए और इन दोनों के साथ कब कोई ऐसा लम्हा चिपक जाए जो वो ज़िंदगी जी ले जो ये लम्हा 72 साल से जीना चाह रहा है। इस वक्त तो कोई अमरेश पुरी भी नहीं जो ये कह सके कि जा सिमरन जा, पर मुझे यकीन है कि एक बार ऐसा लम्हा ज़रूर आएगा जिसकी पकड़ में वो ज़िंदगी आ जाए जो मैं और आप जैसे करोड़ों जीना चाहते हैं, भले टीवी स्क्रीनें कितनी ही आग उगल लें।
वसत की डायरी आपको कैसी लगी? हमें आपके खतों का इंतज़ार रहेगा। और अब सुनते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में अब जाकर भारतीय टीम के चेहरे खिले। जब नॉटिंगम में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन कल भारत ने इंग्लैंड की पहली पारी को महज 161 रन पर समेटा और खेल समाप्त होने के समय तक अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 124 रन बना लिए। पहली पारी के आधार पर भारत को 161 रनों की बढ़त मिली, जिसे मिलाकर भारत के पास अब 292 रनों की बढ़त है और उसके 8 विकेट बाकी हैं। और अब समीक्षा। एशियाई खेलों में भारत की चुनौती कितनी दमदार। इंडोनेशिया में इन दिनों 18वें एशियाई खेलों का बिगुल बज चुका है। जकार्ता और पालमबांग में 45 देशों के खिलाड़ी एक एक पदक के लिए अपनी जी जान लगा रहे हैं और कल भारत ने भी एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। भारत ने इन खेलों में अपना खाता कांस्य पदक के साथ खोला जब अपूर्वी चंदेला और रवि कुमार ने 10 मीटर राइफल मिश्रित वर्ग में 429.9 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। लेकिन कुश्ती में दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार के पहले ही दौर में बहरीन के पहलवान के हाथों मिली हार से उभारते हुए 65 किलो भार वर्ग में बजरंग ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। फाइनल में उन्होंने जापान के देइची ताकातानी को 3-1 से हराया। बजरंग ने इंडोनेशिया जाने से पहले कोई बड़े बड़े दावे नहीं किए।
कोई भी टूर्नामेंट हो टफ होता है, एशियन गेम्स काफी बड़े इवेंट है और कोशिश करेंगे कि भाई अपनी तरफ से बेस्ट करें।
आज भी भारत को पहलवानों से कुश्ती में पदक की आस है, लेकिन इस बार भरोसा महिला पहलवानों पर है। 50 किलो भार वर्ग में उतरने जा रही विनेश फोगाट 2014 के इंचियोन एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीत चुकी हैं।
अपना बेस्ट करने की ट्राई करूंगी और गोल्ड से तो ऊपर कुछ नहीं है, तो निशाना गोल्ड पे रहेगा बिल्कुल।
57 किलो में पूजा ढांडा का तो ये पहला एशियाई खेल है, लेकिन बीते राष्ट्रमंडल खेलों में वो रजत पदक जीत चुकी है।
अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन हमारी हो चुकी है और हम एशियन गेम्स खेलने के लिए तैयार हैं।
बैडमिंटन में आज रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता पीवी सिंधु और स्टार साइना नेहवाल के अलावा महिला युगल की माहिर भारत की अश्विनी पोनप्पा टीम मुकाबलों में उतरेंगी। साइना नेहवाल करिश्माई खिलाड़ी हैं और पिछली यादें उनमें जोश भर रही हैं।
Last time was very very special for Indian women's team because we got bronze medal for the first time. I'm sure this time also we'll do really well like how we did in the Commonwealth Games.
हॉकी में कल भारतीय महिला टीम ने मेजबान इंडोनेशिया को 6-0 से हराकर अपना अभियान शुरू किया। टीम की गोलकीपर सविता पूनिया का सपना स्वर्ण पदक जीतकर सीधे ओलंपिक में जगह बनाना है।
पूरी टीम काफी मोटिवेट है, एशियन गेम्स के लिए रेडी है, तो हमारा मेन टारगेट यही है कि हमें डायरेक्ट ओलंपिक क्वालिफाई करना है।
पिछली बार एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे सरदार सिंह इस बार पी श्रीजेश की अगुवाई में खेलेंगे। भारत आज मेजबान इंडोनेशिया के खिलाफ खेलेगा। तमाम उतार चढ़ाव देख चुके सरदार सिंह स्वर्ण पदक से कम की बात नहीं करते।
रैंक वाइज अगर देखें तो इंडिया एशियन टीम से काफी ऊपर है और पेपर्स पे हम स्ट्रॉन्ग टीम है, बट क्योंकि आजकल की जो मॉडर्न हॉकी है किसी भी टीम को इजी नहीं ले सकते और हमारा यही टारगेट रहेगा कि गोल्ड हमें इस टूर्नामेंट में जीतना।
निशानेबाजी में महज 16 साल के अनिश भानवाला बीते राष्ट्रमंडल खेलों में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। जूनियर विश्व कप में भी वो इस साल स्वर्ण पदक जीत चुके हैं।
एशियन गेम्स में मास पार्टिसिपेशन होता है, बट मेरा फोकस अपनी ट्रेनिंग पे है और अच्छा शूट करने की कोशिश रहेगी मेरी। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि मैं एक और मेडल जीतता हूँ देश के लिए।
फ्री स्टाइल कुश्ती में आज पुरुष वर्ग में भारत की अंतिम चुनौती 125 किलो भार वर्ग में सुमित मलिक पेश करेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाले सुमित को अपने विरोधियों की ताकत का एहसास है।
हैवीवेट में मुकाबला ज्यादा टफ होता है और ईरान का पहलवान है और ये कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान ये बहुत अच्छे रेसलर हैं, उनके साथ अच्छी बाउट होगी।
रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली महिला पहलवान साक्षी मलिक भी आज ही 62 किलो भार वर्ग में अपना दावा पेश करेंगी। खिलाड़ी तो और भी खेलों के बहुत हैं, लेकिन फिलहाल तो आज देखें कि इनके दावों में कितना दम है। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
कार्यक्रम में आपसे विदा लें उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर दिलनवाज पाशा से।
भारत के मौसम विभाग के मुताबिक बाढ़ प्रभावित केरल में अगले 5 दिनों तक कम बारिश होगी, जिससे प्रभावित लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। कई इलाकों में बाढ़ का पानी भी उतरने लगा है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने ईद उल अजहा के मौके पर तालिबान के साथ एकतरफा संघर्ष विराम का ऐलान किया है। कर्ज संकट में फंसे ग्रीस की वित्तीय मदद के लिए 3 साल से चल रहा यूरोजोन राहत कार्यक्रम समाप्त हो गया है। खाड़ी देश कतर ने तुर्की की अर्थव्यवस्था को सहयोग देते रहने के संकेत दिए हैं। इंडोनेशिया के लामबोक द्वीप पर भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। उत्तर पूर्वी नाइजीरिया में इस्लामी लड़ाकों के हमले में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन किया कपिल देव सिंह ने। आपसे अगली मुलाकात होगी शाम को कार्यक्रम दिन भर में। तब तक आपके साथ है बीबीसी हिंदी का .com पन्ना। फिलहाल सभी साथियों समेत मानसी दास को दीजिए अनुमति। नमस्कार।